हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वेलकम श्री गिरिराज गोवर्धन। आप लोग ऐसे बैठ सकते हो, पीठ मत दिखा के बैठो, सीधे बैठो। ये प्रश्न मैंने आपको इसलिए पूछा कि आर यू कंफर्टेबल, क्योंकि अगर आप यहां पर कंफर्टेबल नहीं हो तो दुनिया में कहीं भी और कंफर्टेबल होने का चांसेस बहुत कम है। निज निकट निवास देही गोवर्धन त्वम। संत लोग प्रार्थना करते हैं कि हे गिरिराज, आप हमें अपने चरणों में आश्रय दीजिए, चरणों में निवास दीजिए, चरणों में सहारा दीजिए। ये सभी भक्तों की कामना रहती है कि वो उन्हें गिरिराज की तलैटी, तलैटी का मतलब है बॉटम, हाँ, तलैटी मीन्स एट द बॉटम ऑफ गोवर्धन। ये वही दिव्य जगह है जो अन्योर मार्ग कहते हैं इसको, अन्योर मार्ग। और ये जो कुंड आपके पीछे है उसका नाम है दान निवर्तन कुंड। और इससे अधिक निकट आप गिरिराज गोवर्धन पर नहीं पहुंच सकते। श्री ब्रह्मा जी और शिव जी, जैसे मैंने आपको बताया कि पर्वत बने हुए हैं बरसाना में और नंदगांव में। इसका आवाज क्यों फट रहा है, देखो जरा क्या हो रहा है उसका। लेकिन स्वयं श्री विष्णु यहां पर पर्वत बनकर बैठे हुए हैं और प्रभु रामचंद्र ने स्वयं विष्णु जी का पर्वत अपने हाथ से यहां पर स्थापन किया है। अलग अलग युगों की अलग अलग कथाएं, तो मैंने आपको बताई थी पहली कथा, वो जो है पुलस्त्य मुनि ने यहां पर उनको रखा। अलग लीला अलग कल्प में प्रभु रामचंद्र ने भी लिखा, उसका भी वर्णन आता है पुराण में। लेकिन क्योंकि ये विष्णु का पर्वत है इसलिए इस पर चढ़ना मना है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब यहां पर आए थे तो उनको श्री गोपाल जी का दर्शन करने की बड़ी इच्छा थी, माधवेंद्रपुरी द्वारा स्थापन किए गए श्री गोपाल जी का दर्शन करने की बहुत इच्छा चैतन्य महाप्रभु की थी। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के आने के कम 4500 साल पहले गोपाल जी का मूर्ति यहाँ पर, सॉरी कुछ 200 साल पहले, 300 साल पहले यहाँ पर मूर्ति को स्थापन किया गया था। तो महाप्रभु जी का अवतार हुआ तो उनको जब वो चैत्र वैशाख के महीने में जब ब्रज में आए सन 1510 में, हाँ 1510, अभी 1510 के बाद 2010 जब हुआ तो 500 साल पूरे हुए चैतन्य महाप्रभु के ब्रज में आने के समय के। तो चैत्र वैशाख में वो आए थे यहाँ पर, और जब गिरिराज गोवर्धन में गोपाल जी का दर्शन करने की इच्छा हुई, वृंदावन में दर्शन करके यहाँ पर आए थे वो। फिर उन्होंने यहाँ पर राधा कुंड और श्याम कुंड को प्रकट किया और उसके बाद वो यहाँ पर आए। थोड़ा आगे जाकर आपको गोपाल जी का दर्शन स्थली मिलेगी। जैसे गिरिराज जो है वो अनंत स्थलियों का स्थान है, हाँ, तो आप 7 दिन भी यहाँ पर रहेंगे तो सभी स्थान कवर नहीं कर सकते हैं। इतने यहाँ पर अनंत स्थान हैं, संतों के हैं, भगवान के हैं, गोपियों के हैं, देवताओं के हैं, सभी लोगों के लीला स्थली यहाँ पर हैं। सब मोबाइल बंद कर दो अपना प्लीज। तो भी गोपाल जी जो थे वो माधवेंद्रपुरी ने भगवान के आदेश के अनुसार उनको गिरिराज के ऊपर स्थापन किया था अनियोर गांव में। तो महाप्रभु जी तो भक्त बनकर आए थे, स्वयं भगवान है लेकिन भक्त बनकर भक्तावतार में आए थे, तो वो चढ़ने के लिए तैयार नहीं थे उसपे। लेकिन जो भक्त रूप में भगवान आए हैं उनको दर्शन देने के लिए जो स्वयं भगवान गोपाल जी है वो भी व्याकुल है। तो राधा रानी का भाव लेकर भगवान स्वयं आए महाप्रभु चैतन्य बनकर, और गोपाल जी स्वयं भगवान के रूप में विराजमान है, तो गोपाल जी के मन में भी व्याकुलता थी कि मेरे भक्त का दर्शन मिले। तो उन्होंने एक लीला रचाई, उन्होंने गांव में ऐसा बवाल फैला दिया कि यवन लोग आ रहे हैं आतंक करने के लिए और गोपाल जी की मूर्ति और मंदिर तोड़ने के लिए आ रहे हैं। तो सब गांव में ऐसा घबराहट फैल गई, आतंक हो गया, डर फैल गया कि अभी गोपाल जी को ले जाएंगे। तो पुजारियों ने तुरंत गोपाल जी की मूर्ति को पहाड़ के नीचे उतराया, हाँ, और गांठोली गांव ले गए। तो चैतन्य महाप्रभु को खबर मिली कि वो ठाकुर जी का गांठोली गांव में, तो कीर्तन करते हुए यहां से भगवान गए, गोपाल जी के मंदिर के यहां से कीर्तन करते हुए गए, और वहां पर मेरे ख्याल से कुछ 7 दिन तक भगवान रहे, पता नहीं 3 दिन या 7 दिन, बहुत समय तक वहां पर रहे। और 7ों दिन दिन रात चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ, ब्रजवासियों के साथ में यहाँ पर दिव्य संकीर्तन किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर गांव में खबर फैल गई कि जो तो थी वो अफवाह थी। फिर दोबारा ठाकुर जी को गोपाल जी मंदिर में, जहाँ पर अभी वो थोड़ा पीछे इसके आगे जाएंगी, कुछ किलोमीटर आगे हैं। तात्पर्य कहने का यह है कि यहाँ पर स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु जब भक्त के रूप में अवतार लिए, तो उन्होंने ये आदर्श स्थापन किया कि गोवर्धन पे हम लोग चढ़ नहीं सकते, इसलिए हम दूर से दर्शन करते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मैंने कहा था आपको कि गोवर्धन तो वहां तक थे, लेकिन जमीन में ढस गए हैं, मतलब जमीन के अंदर यहां पर भी है। तो जिस जमीन पर हम लोग बैठे हैं उसके नीचे गोवर्धन है ना कि नहीं है, तो इसका विस्तार तो बहुत, सत्ययुग के द्वारा देखा जाएगा तो उसका विस्तार तो बहुत विशाल है। तो हमको केवल आगरा में जाना पड़ेगा, फिर आगरा से दर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि उतना फैलाव तो होगा ना उसका, निश्चित रूप से होगा। हाँ, वो भी ब्रज है, अग्रवन, अग्रवन इज आगरा बाय द वे, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो ये गिरिराज की जो महिमा है, वो श्री चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर निवास किया और गिरिराज को भजन किया, पूजन किया। चैतन्य महाप्रभु यहाँ से पहले उधर गए दक्षिण की ओर, और वहाँ पर उन्होंने ध्यान किया, और वहाँ पर उनको ध्यान में 2 कुंड नजर आए, और राधा कुंड श्याम कुंड का उन्होंने आविर्भाव किया, जो समय के अनुसार लीला के कारण, भगवान के इच्छा के कारण लुप्त हो गए थे। फिर महाप्रभु चैतन्य ने उसको दोबारा स्थापित किया, फिर रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने उसको जीर्णोद्धार किया, उसका कंकण कुंड और श्याम कुंड, वो फिर आगे जाकर दोबारा जीर्णोद्धार किया, लाला बाबू ने भी उसका जीर्णोद्धार किया। लाला बाबू नाम के बड़े मशहूर भक्त हैं, हो सकता है भगवान की इच्छा से हम कल उनके मंदिर में जाएंगे, वृंदावन में गोपेश्वर के पास। इस तरह से कई बार, 2-3 बार उनका जीर्णोद्धार हुआ, और राधा कुंड श्याम कुंड भगवान ने प्रकट किया हमारे लिए। तो श्री गिरिराज गोवर्धन, आप अगर गौर से देखेंगे तो इसकी कुछ शिलाएं श्याम वर्ण की हैं और कुछ शिलाएं गौर वर्ण की हैं। आप देख रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है आपको, वो कृष्ण बलराम राधा कृष्ण का स्वरूप है। और गौर से आप देखेंगे तो इन शिलाओं पर आपको लीलाएं नजर आएंगी। अगर आपको दूर से नजर नहीं आता है तो यहां से आगे, कभी आप मौका मिलेगा तो जाइए, यहां से आगे गया प्रसाद जी महाराज की समाधि है, और उसके अंदर गया प्रसाद जी महाराज की समाधि जहां पर है, वहां पर अनेक शिलाओं को इकट्ठा करके रखा है, और उन हरेक शिलाओं पर लीलाओं का दर्शन है। राधा कृष्ण सामने सामने बैठे हुए हैं, और कुरुक्षेत्र का दृश्य भी है, सेना लगी हुई है, और किसमें मोर है, मोर के पास भगवान बैठे हुए हैं, भगवान का मुकुट है। सुंदर सुंदर दर्शन जो है, छवि जो है, स्वतः ही प्राकृतिक रूप में शिलाओं के ऊपर बनी हुई है। साक्षात ये भगवान का लीलास्थली है, अंतरंग लीलास्थली है। जैसे मैंने आपको बताया परसों की कथा में, आज बताया पुलत्स्य मुनि के बारे में, पुलत्स्य मुनि ने उनको यहाँ पर रखा, फिर वो आगे नहीं बढ़े, फिर उनको शाप प्राप्त हुआ, फिर वो ढस रहे हैं जमीन में। तो ऐसे लिखा है कि जब ये पूरी तरह से जमीन के अंदर चले जाएंगे तब घोर कलयुग प्रारंभ हो जाएगा। जमुना जी भी पूर्णता से, गंगा जमुना जी पूर्णता से वो सूख जाएंगे कंप्लीटली, और बद्रीनाथ केदारनाथ जाने का रास्ता जो है वो बंद हो जाएगा। स्वतः प्राकृतिक रूप से शिलाएं ऐसे गिरेंगी कि वहां तक आप पहुंच नहीं सकते। वो घोर कलयुग का आरंभ होने का लक्षण है, और मेरी आप सबके लिए प्रार्थना है कि तब तक आप यहां नहीं रहें, क्योंकि तब तक रहना मतलब बहुत भयंकर चीज है। वो चैतन्य महाप्रभु का ऐसा वरदान है कि चैतन्य महाप्रभु 1486 साल उनका, इस साल में उनका आविर्भाव हुआ था, और वो अंतर्दान हो गए थे 1534 साल में, लेकिन उन्होंने ऐसा वरदान दिया है कि मेरे जन्म के मतलब उनके जन्म के 10,000 साल तक कलयुग का स्वर्ण युग बना रहेगा। कलयुग का स्वर्ण युग का मतलब है कि उस समय उस कालावधि में जो भी भगवान नाम को स्वीकार करेगा, खास करके अगर हरे कृष्ण महामंत्र का स्वीकार करेगा, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने गौलोक धाम से इम्पोर्ट किया हुआ है हमारे लिए और अपने हाथ से सब लोगों को बांट रहे हैं। वो ऐसी महाप्रसाद ही है, वो हरे कृष्ण महामंत्र इज अ ग्रेट महाप्रसाद ऑफ द लॉर्ड, अपने हाथ से सबको बांट रहे हैं, वितरण कर रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति इस 10,000 साल की कालावधि में हरे कृष्ण महामंत्र को, हरिनाम संकीर्तन को स्वीकार करेगा अपने जीवन का अविभाज्य अंग के रूप में, वो उसी जन्म में भगवत धाम प्रवेश करेगा। और 10,000 साल के बाद में घोर कलयुग शुरू होगा और उसमें आकाश में बादल होंगे लेकिन जल नहीं बरसेगा, पृथ्वी से अनाज नहीं उगेगा, पेड़ पर फल फूल नहीं आएंगे, खाना खत्म हो जाएगा तो सब जानवर को खाने लगेंगे, जानवर भी एक दिन खत्म हो जाएंगे, फिर इंसान इंसान को खाने लगेगा, जो बलवान है वो कमजोर को खाएगा, जो बुजुर्ग है वो बच्चे को खाएगा। और अंत में कहा गया है, 12वें स्कंद में वर्णन आता है भागवत जी में कि माता केवल बालक को जन्म देगी खाने के लिए उसको। जैसे अभी शेरनी होती है ना, शेरनी वो भी खाते है ना, वो कई दिन तक गर्भावस्था में वो शिकार नहीं कर सकती है, फिर गर्भावस्था से डिलीवरी होती है उसकी तो बहुत थक जाती है, वो 3 बच्चे पैदा करते तो एक बच्चा को खा जाती है और फिर वात्सल्य उसका जागृत होता है और उसके बाद में 2 बच्चों पर प्रेम करते। तो जानवर के जीवन में जो हो रहा है वो इंसान के जीवन में होने लगेगा, इतना भयंकर अकाल और पतित काल होगा कि लोग सब जो है ऐसा ग्रहण करेंगे। इसलिए हम लोगों को प्रार्थना करना है गिरिराज जी गोवर्धन के पास बैठकर कि हमको इसी जन्म में भगवत धाम लौट के जाना है। बस हो गए 84 के फेरे बहुत हो गए, बस नंबर 84 बहुत बार घूम रही है, हाँ जगह जगह घूम रही, बार बार वहीं से वही लेके आ रहे, घुमा घुमा के, सर्कुलर रूट है उसका बस नंबर 84। तो हमको इस 84 लक्ष्य योनि के चक्र से मुक्त होना है और वो भगवत प्रेम जागृत किए बिना हम मुक्त नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना। कोई सस्ती वस्तु नहीं है कि आप लोग ऐसे आराम से उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए हमारे जीवन की जो ऊर्जा है, शक्ति जो है, एनर्जी है, को समर्पित करना पड़ेगा भगवान के चरणों में, हरिनाम संकीर्तन का सहारा लेना होगा, तब जाकर हम उम्मीद रख सकते हैं। इतना करने के बाद में ये मत समझना कि हम लोग ये कर रहे हैं तो इसके फल रूप हम लोग को वो फल मिलना ही चाहिए, नहीं, इतना करने के बाद में केवल भगवान को ये यकीन होगा कि इनको जाना है। आपने किया हुआ प्रयास किसी भी हद पर किसी भी समय पर्याप्त नहीं हो सकता है। इट इज नेवर पॉसिबल दैट वॉट एवर वी डू एज साधना इज इनफ टू क्वालिफाई अस टू गेट इन टू द किंगडम ऑफ गॉड एट, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन जब हम 100% मेहनत करेंगे तो वो 100% मेहनत को देखकर जो बहुत अणुमात्र है, भगवान यकीन से आपको अपने धाम में कृपा से लेके जाएंगे। जैसे जो वो थी ना गिलहरी, वो कुछ दाने फेंक रही थी भगवान रामचंद्र के सेतु में, अगर वो 1 करोड़ जन्म तक भी फेंकती रहती ना कभी सेतु पूरा होने का कोई चांस नहीं था। उसकी सेवा एकदम तुच्छ थी, वैसे देखा जाए तो कोई वैल्यू नहीं उसका सेवा का, व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन। लेकिन प्रभु रामचंद्र जो है बड़े दयालु हैं, भगवान बड़े दयालु होते हैं, वो ये देखते नहीं कि कितनी मात्रा में आप सेवा कर रहे हैं, वो कौन सी भावना से कर रहे हैं वो देखते हैं। तो गिलहरी ने अपना 100% जीवन समर्पित किया था उस सेवा में और वो 100% उसका जो था वो बड़ा तुच्छ था, नगण्य था, फिर भी उसका 100% समर्पण देखते हुए भगवान ने कृपा किया उसको। उसी तरह से हमारी 100% जो हम लोग भगवान को अर्पण कर रहे हैं वो भी ऐसे अणुमात्र और तुच्छ है, लेकिन हमारे 100% समर्पण को, भावना को देखते हुए भगवान हम पर कृपा करेंगे और हमारा उद्धार करेंगे। और गिरिराज जी ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तिमत्व है, ऐसे पर्सनालिटी है कि ये हमको हरि भक्ति दे सकते हैं। गोपियां इनका गौरव करती हैं कि ये हरि भक्ति को देने वाले हैं, हर प्रकार की क्षमता रखते हैं, भगवान की सेवा करने में, और जो उनका शरण ग्रहण करता है उनको वो हरी भक्ति देते हैं। गोपियां भी इनका आसरा चाहती हैं, गोपियां भी इनकी कृपा चाहती हैं। तो जब प्रभु रामचंद्र की सेतु बंध का काम चल रहा था तो हनुमान जी ने उनको उठाया। पहले तो हनुमान जी इनको उठा ही नहीं पाए, इतने बड़े शक्तिशाली हनुमान जी वो दास्य भाव में है। गिरिराज गोवर्धन जो है बड़े उच्च भाव में है, वो भगवान की माधुर्य लीला के सेवक हैं, माधुर्य धाम के सेवक हैं। इस गोवर्धन धाम को माधुर्य धाम कहा गया है, साक्षात माधुर्य धाम है ये गोवर्धन गिरिराज जी। तो दास्य भाव में जो सर्वश्रेष्ठ है वो भी गिरिराज को उठा नहीं पाए, पुलत समुद्र ने उठाया था लेकिन हनुमान जी नहीं उठा पाए। तो हनुमान जी ने देखा, जब कोई होता ना पहलवान, समझो कोई भारी वस्तु होती है और वो उठाई नहीं जा रही है, तो पहलवान जाके चारों ओर देख के आता है वो कितना विस्तार है उसका, थोड़ा सा अपने कितनी शक्ति लगाई जाए। तो हनुमान जी जैसे ये पर्वत लंबा लंबा पर्वत है, मतलब इतना ऊंचा नहीं है लेकिन लंबाई बहुत ज्यादा है, इस तरह से उसका मोर मोर जैसा होता है ना, मोर वो कैसा लंबा होता है, तो अगर आप उल्टा मोर मतलब वो ऐसे खड़ा होता है, उसकी गर्दन ऊपर होती है, अगर आप उल्टे मोर की तुलना करें विचार करेंगे मन में कि मोर उल्टा है, उसकी आंखें ऊपर है, पैर भी उसके ऊपर हैं, तो वैसा कुछ गिरिराज गोवर्धन का शेप है, मयूर स्वरूप है वो। तो एक दिशा में हनुमान जी भागने लगे, मतलब उड़ने लगे, तो गिरिराज जी वहां से विस्तारित होने लगे। हनुमान जी आगे आगे जा रहे हैं तो गिरिराज जी आगे 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 बढ़ रहे हैं। उनको लगा यहां से अनंत होंगे तो हम इस तरफ जाएंगे, तो इस तरफ उड़ने लगे तो उस तरफ से गिरिराज जी बढ़ने लगे। तो वो हनुमान जी गिरिराज जी का अंत ही पकड़ नहीं पाए, तब वो समझ गए कि ये कोई भौतिक वस्तु नहीं है, पत्थर नहीं है मुझे उठाने के लिए, कोई दिव्य वस्तु है, कोई दिव्य जीव है, कोई दिव्य वैष्णव है। तो फिर हनुमान जी दंडवत प्रणाम करते हैं और बड़ी नम्र होकर पूछते हैं कि आपका परिचय दीजिए, आप कौन हो, आप निश्चित रूप से कोई भगवान के दिव्य भक्त हो। तब जाकर गिरिराज जी अपना परिचय देते हैं और तब वो पूछते हैं कि आप क्यों आए यहां पर। तो फिर प्रभु रामचंद्र का पूरा जो कार्य है उसके बारे में वर्णन करते हैं। तब वो जो हनुमान जी को पूरी शक्ति के साथ नहीं उठ रहे थे, एकदम फूल की तरह हल्के हो गए वो, और तुरंत उन्होंने उठाया हनुमान जी को, पूरे आसमान में चले गए। और फिर आकाशवाणी हुई और तब उनको कहा गया कि अभी जरूरत नहीं है उसकी, तो फिर वापस रखा गया। तो भगवान ने उनको वादा किया था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वादा किया कि जब हम अगले युग में अवतार लेंगे, पूर्ण अवतार लेंगे पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में, तब आपके ही आसपास हमारी अंतरंग लीला करेंगे, आपके आसपास सभी माधुर्य के अंदर जो लीलाएं हैं, श्रृंगार रस की, वात्सल्य रस की, दास्य रस की, साख्य रस की, कौचारण की, रास लीला की, एकांत मिलन की, सब प्रकार की जो विविध प्रकार की अद्भुत लीलाएं हैं वो सब आपके सानिध्य में करेंगे, आपकी तलहटी में करेंगे। तो ये गिरिराज जी का जो जितना परिक्रमा है उसके अंदर अनंत सलिया है, जैसे मैंने बताया भगवान की सलिया है, भगवान के सखाओं की सलिया है, भगवान के माता पिताओं की सलिया है, सखियों की सलिया है, भगवान के संत लोग जो उन्होंने भजन किया है उनके भजन की सलिया है, अनंत सलिया है। इसके अंदर गुफाएं भी अभी भी है, आगे आगे जाएंगे आप, वो पूछड़ी का लौटार करके उसका एंड आता है, वहां पर आपको सुंदर सुंदर गुफाएं दिखेंगी गिरिराज के अंदर। तो ये गिरिराज जो है वो मोर के रूप में है, इसकी जो दो आंखें हैं उसको राधा कुंड श्याम कुंड माना गया है, राधा कुंड श्याम कुंड जो है उनकी आंखें हैं दो, और इनकी जो गर्दन है मोर की वो दान घाटी है, जहां से हम लोग भी आए ना राइट टर्न लेके, वो दान घाटी है, दान घाटी यानी कि उनकी गर्दन है, और पूंछड़ी जो है वो उनका पूंछ है, वो इस तरफ है, आंख इस तरफ है, राधा कुंड श्याम कुंड इस तरफ, और ये शरीर है उनका। और वो आगे जाकर जो है ऐसे कम कम हो जाता है, फिर वो पूंछड़ी के रूप में समाप्त हो जाता है, और वहां से उसकी परिक्रमा उल्टी घूम जाती है। तो गिरिराज की जो परिक्रमा का जो इतना महात्म्य बताया गया है, ये परिक्रमा का महात्म्य है कि गिरिराज जी के चरणों का पूजन है वो, जब भक्त लोग गिरिराज की परिक्रमा करते हैं नंगे पैर, तो वो गिरिराज जी के चरण कमल की सेवा मानी गई है। गिरिराज एक पर्वत भी है, गिरिराज भगवान का भक्त भी है, गिरिराज विष्णु भी है, और गिरिराज स्वयं कृष्ण भी है। इसकी सबसे पहली परिक्रमा किसने लगाई थी पता है आपको? कौन है वो पहला व्यक्ति जिसने गिरिराज की परिक्रमा लगाई? Anybody knows who is the first one to go around Govardhan? Sri Krishna himself. Krishna Bhagavan ne sabse pehli parikrama lagai. Jab unhone kaha ki Indra ka pujan band karo aur Govardhan ka pujan karo. To sabhi brajvasiyon ko lekar Bhagavan ne apne netritv mein sabse pehli parikrama lagai. Swayam unhone apne udaharan se ye sthapit kar diya ki Giriraj ki parikrama ye bahut bada pujan hai Bhagavan ka. और उस परिक्रमा के बाद में बड़ी लंबी कथा है भागवत में, बहुत हमारे राधा गोविंद जी महाराज 7 दिन केवल इस लीला पर कथा करते हैं, 7 दिन, 6 घंटे दिन में बोलते हैं, 7 दिन तक केवल गिरिराज लीला पर. हाँ, इतना सुंदर लीला है. संक्षेप में इसकी लीला ऐसी है कि इंद्र का पूजन हर साल हुआ करता था. नंद महाराज बड़े कृतज्ञ भावना से कि आकाश से वर्षा इंद्र देते हैं, वर्षा की वजह से क्या कहते हैं उसको, अनाज आता है, घास उगती है, हमारी गाय चरती हैं, भोजन मिलता है हमको, तो इसलिए हम उनकी कृतज्ञ भाव जो है वो प्रकट करने के लिए यज्ञ करना चाहिए हर साल. तो उसकी तैयारी हो रही थी, भगवान ने कहा कि ये क्या जरूरत है करने की, वो तो उनका फर्ज है, ड्यूटी है उनका. सूरज का ड्यूटी है प्रकाश देना और उष्णता देना, चंद्रमा की ड्यूटी है रात को प्रकाश देना, जैसे वरुण की ड्यूटी है यहाँ के जलाशय का संभालना उसको, वैसे इंद्र का कार्य है सभी देवताओं के समान वर्षा करना और पर्याप्त जल की व्यवस्था करना. क्योंकि उनको पता था कि इंद्रदेव को कुछ थोड़ा सा गर्व हो रहा था, जानबूझ के 7 साल की उम्र में भगवान ने ऐसा तर्क किया अपने पिताजी के साथ. तो पिताजी ने बहुत समझाने की कोशिश की, नहीं नहीं बेटा तुम जानते नहीं, वो तुम बालक हो, इंद्र देवता बड़े हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय, हम उनके ऋणी है. तो उन्होंने जिद किया कि नहीं करना चाहिए. फिर क्या करना चाहिए? गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए. गोवर्धन हमारे लिए घास देता है, गोवर्धन में जल देता है, हमको फल देता है, हमको फूल देता है, हमको आसरा देता है, सब कुछ हमारा सहारा. जो हम गऊ पालक लोग हैं, हमारे गायों के लिए सबसे जरूरी जो वस्तु है सब कुछ गोवर्धन देता है. नाम ही उसका गोवर्धन है. हाँ, गऊ का वर्धन करने वाली व्यक्ति गोवर्धन. तो इस बार हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, गोवर्धन की करेंगे. तो पिताजी ने कहा कि एक काम करते हैं, इंद्र के भी करेंगे, गोवर्धन के भी करेंगे, दोनों के करेंगे. बोले नहीं नहीं नहीं, अभी साधन जुड़ गया है पूरा, तो सारा साधन जो है गोवर्धन के सेवा में लगाओ. बहुत झिकझिक हुआ, फिर भी बालक नहीं माना. तो फिर बालक के स्नेह की वजह से उन्होंने इस बात को राजी हो गए. वो सारी सामग्री जो थी वो गिरिराज को लगाई गई. बड़ी विशेष बात है ये. हाँ, घर में जितना भंडार था, साल भर का जितना अनाज आया था, जितना भी भंडार भरा हुआ था, वो सारा खाली कर दिया उन्होंने. हर एक जो कर्ण था धान्य का, वो सब लगा दिया भगवान के लिए, व्यंजन बनाने के लिए. और ये जो जगह है आप यहाँ पर बैठे हैं, थोड़ी सी आगे यहाँ से लेकर आनियोर गांव जो है कितना किलोमीटर होगा? 3 किलोमीटर, 3000 मीटर, 9000 फीट, 10000 फीट होता है शायद. एक फीट में कितना आइटम बैठेगा? एक आइटम बैठ सकता है. 10000 फीट तक पूरा 56 भोग का भोग लगाया गया. हौद भरे गए, हाँ, पेयों के, रसों के, मिठाइयों के, चावल के, सब्जियों के, दाल पकोड़ा, हलवा, रसगुल्ला, जो जो वस्तु बन सकती है वो पर्वत के रूप में बनाई गई. और हमारे मंदिर में तो एक बार 1.5 फुट और 4 फुट का बनाने को कहा था, तो कई दिन तक बनते रहे सब आइटम्स. 4 फुट मतलब कितना होता है? अगर बटाटे वड़े बनाए जाए तो हजारों बटाटे वड़े बनने पड़ेंगे. तो ऐसे वो तो 4 फुट तो कुछ भी नहीं है. बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़, बड़े ऊंचे ऊंचे हौद बनाए गए दूध दही लस्सी रसों के. और घर में जितना भी था भंडार सब खाली किया गया और वो यहां से लेकर वहां तक लगाया गया. हम लोग ने, गुरु महाराज ने जब भोग लगाया था तो यहाँ लगाया था. ये आप जहाँ बैठे हैं ना, ये पूरी भोग लगाने की जगह है. अब भक्त लोग वहाँ ऐसे फैल के बैठते थे. ये पूरा कॉर्डन जो है वो पूरा यहाँ पर गुरु महाराज ने भोग लगाया था गोवर्धन पूजा के दिन. और एक बार नहीं, कई बार हो गया अभी, वो हर यात्रा में लगाते. तो भगवान ने सबको लेकर फिर परिक्रमा लगाया गोवर्धन का, और फिर भगवान ने उसको भोग लगाया गोवर्धन को. और सबके आश्चर्य के लिए क्या हुआ, भगवान उनके बीच में खड़े हैं, और भगवान स्वयं गोवर्धन बन गए। उनके बीच में भी खड़े हैं 7 साल के छोटे से बालक के रूप में, और गोवर्धन के रूप में विशाल रूप धारण किया उन्होंने। और कुछ ही क्षणों में सारे जितने व्यंजन बनाए हुए थे सब खा लिए उन्होंने। जैसे कोई बच्चा खाता है ना घास कोई निकाल के थोड़ा सा, वे सारे व्यंजन धड़ाधड़ खा लिए उसने, और एक ही कुछ क्षणों में सब खाली हो गया। और उन्हें कहने लगे आनी और क्या बोले वो आनी और दो और दो। सब लोग परेशान हो गए, अभी क्या करें, सब कुछ खत्म हो गया है। तो एक तुलसी पत्र दिया गया और भगवान संतुष्ट हो गए, क्योंकि वो 3 किलोमीटर भोग लगाया है कि 50 किलोमीटर लगाया है उसमें वो प्रसन्न नहीं होते, भाव से प्रकट होते, समर्पण से प्रसन्न होते हैं। ग्वाल बालों ने कुछ देखा नहीं कि शाम का डिनर कहाँ से खाएंगे, दोपहर में तो लगा दिया पूरा भोग, शाम का डिनर कहाँ से आएगा, है दोपहर का बच जाएगा तो शाम को खा लेंगे, ऐसा नहीं था। भगवान ने पूरा खा लिया उसको, शाम को बचने का चांस ही नहीं है, खुद को भी नहीं मिल रहा है। भगवान की संतुष्टि के लिए पूरा जो संपत्ति उनके पास में है, जो भी उनका साधन है रिसोर्स है, पूरा लगा दिया उन्हें भगवान के सेवा। ये विश्वास के साथ कि भगवान हाँ हमारा पालन भारा एक होना तो हमारा, आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही पालन करता है। फिर भगवान ने सारा भोग दोबारा प्रकट किया, जितना भी भोग लगाया था उसको दोबारा प्रकट किया महाप्रसाद के रूप में, और फिर बताया कि कैसे कैसे उसको बांटना है, बड़े बूढ़ों को, स्त्रियों को, बालकों को, बीमारों को, अपाइज लोगों को, सब पहले बांटना है, फिर खुद पाना है, फिर जानवरों को देना है, बंदरों को देना है। हमारे भी भोग में ये व्यवस्था थी, बंदरों के लिए विशेष अलग से आइटम यहाँ छोड़े गए। तो इस तरह से फिर सब लोगों ने महाप्रसाद की प्राप्ति की, इतना आनंद हुआ उसमें। ऐसा ये लीला है कि हमने एक नाटिका की थी उसकी कई साल पहले मुंबई में गिरिराज के पूजन पर, इतना आनंद का उत्सव है। इसमें सब लोग सज धज के आते हैं, अलंकार पहनते हैं, अपने आप को फूलों से सजाते हैं, अलग अलग व्यंजन बनाते हैं, गीत गाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, आरती करते हैं भगवान की, नाम कीर्तन करते हैं, भोजन करते हैं। फिर जब हमारा यहाँ पर भोजन होता है 56 भोग के बाद में, तो हर एक भक्त जो है 3-3 थाली लेके बैठता है, क्योंकि एक थाली में तो कैसे आइटम आएंगे, इसमें एक में गीला आइटम, एक में नमकीन आइटम, एक में मीठा आइटम, ऐसे अलग अलग लेते हैं। और अन्य टाइम पे हमको बोलना पड़ता है प्रभु जी एक स्वीट और दो ना, प्रभु जी एक मिलेगा क्या, नहीं नहीं वो लिमिटेड है, वो स्वीट लिमिटेड है। वो दिन पे क्या होता है, वो सब लोग स्वीट और आइटम जो ले चाहिए आपको वो बार बार खुद आपके पास में लेके आते हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सब लोग आपके पास में आके देते हैं। तो फिर एक थाली पैक होती है और मुंबई जाती है ऐसा है। तो कुछ थालियाँ योजनाबद्ध रीति से ऐसे बनाते हैं कि भाई इसमें डालो, इसको हम मुंबई लेके धीरे धीरे खाएंगे उसको, ऐसा मतलब पर्याप्त मात्रा है, प्रचुर मात्रा में भगवान कृपा करते हैं, कोई कमी नहीं है। हमने देखा ये चमत्कार, हाँ लोग भरपेट होके संतुष्ट हो रहे, फिर भी आइटम इतने बचे हैं कि भाई ले लो उसको, भगवान अपना प्रेम लुटा रहे हैं भक्तों के, कभी कुछ कमी नहीं होती उसके अंदर, हर आइटम बचता है। और कितनी जगह बटा जाता है उसको, परदेश तक पहुंचता है वो। इतना आनंद हो रहा था फिर भी एक व्यक्ति को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो है इंद्र महाराज, इंद्रलोक में बैठे हुए हैं, बोल रहे अरे इस ग्वाल बालों की, गाय चराने वालों की इतनी हिम्मत, एक नटखट बहुत ज्यादा बड़बड़ करने वाले बालक की बात सुनकर पूरी मेरी पूजा कैंसिल कर दी उन्होंने, हाँ इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है उनकी। और जब इसलिए मैंने कहा ना कि मान सम्मान जो है ना वो जब प्राप्त होता है तो बहुत डेंजरस चीज है वो, क्योंकि वो एक बार मिल गया ना आपको मान सम्मान तो भी अच्छा लगता है, नहीं मिलेगा ना बहुत दुख होता है। जितना सम्मान मिलने पर खुशी होती है उससे कई गुना दुख जो है वो ना मिलने पर होता है। और दुनिया का स्वभाव ऐसा है, इस जीवन का, इस भौतिक दुनिया का, इस भौतिक जीवन का स्वभाव ऐसा है कि मान जो है वो मिलेगा तब मिलेगा, आगे गारंटी नहीं उसकी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अस्पताल में बैठे हैं डॉक्टर के चेयर में, सब लोग सम्मान दे रहे हैं, पानी ला के दे रहे हैं, भोजन खिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सर कर रहे हैं, जैसे अस्पताल के बाहर निकलेंगे ना और विरार के लोकल पकड़ेंगे तो क्या होगा अरे कौन डायरेक्टर और कौन अफसर, चलो हटो यहाँ से, सब आपके मुंह को अच्छा मुंह पोछ लेंगे अपना फर्स्ट क्लास कपड़े को, और धक्का लगाएंगे, गाली देंगे। हाँ तो ऐसा है मान सम्मान दुनिया का, वो जगह पर निर्भर है, कहाँ पर आप बैठे हो वहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा गारंटी नहीं है, समय पर निर्भर है और किस समय बात कर रहे हो,
सुबह 7 बजे घर पे रहेंगे तो आपको ऑर्डर आएगा बाथरूम साफ करो, 10 बजे आप जाएंगे ऑफिस में बोलेंगे सबको ऑर्डर करेंगे बाथरूम साफ करो, लेकिन सुबह आपको ऑर्डर मिलती है, फिर दिन में आपको आप दूसरों को देते हैं, समय पर निर्भर है वो। हाँ, तो ऐसे समय स्थान स्थिति हर चीज पर सम्मान उपलब्ध होता है, डिपेंड रहता है उसके ऊपर। तो इंद्र को देवेंद्र का पद मिला था तो सब जगह उनको आहुति अर्पण कर रहे हैं, यज्ञ हो रहा है उनके नाम से, तो एक गांव में यहाँ सब जगह उनका सम्मान हो रहा है, लेकिन एक गांव में एक बार केवल उनका यज्ञ नहीं किया गया, तो इतना उनको गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि अपना संतुलन भी खो बैठे वो। ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड कंपोजर, ही फॉरगॉट कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सद असद विवेक बुद्धि, सार असार विवेक बुद्धि जो है नष्ट हो गई उनकी। देवेंद्र होने पर, इतने ज्ञानी विद्वान भक्त होने पर भी सब भूल गए, क्योंकि क्रोध है ना, क्रोध वो सर्वनाश का कारण है। पहला सम्मान नहीं मिला, दुखी हो गए, फिर क्रोध आया, तो क्रोध ने बुद्धि को पूरा भ्रष्ट कर दिया। और इतनी छोटी सी चीज के लिए उन्होंने क्या आदेश दिया, जाओ समवर्तक बादल जाओ, वो प्रलय के बादल है, वो जब सृष्टि का होता ना विनाश प्रलय होता है तभी उसको भेजते हैं, केवल एक ही ड्यूटी है उसकी, बाकी समय बैठना है पानी इकट्ठा करना है बस। एक समय पे ऑर्डर आएगा जाओ अभी, तब पूरा प्रलय प्रलय करके लौट के आना है, फिर दूसरे प्रलय के तक आराम करना है। जैसे होता ना वो बम फायर ब्रिगेड, दे नेवर वर्क एवरी डे 24 आवर्स, कभी कभी लगती है आग तभी उनको पूरा जाके करना पड़ता है अपना काम, लेकिन बाकी जगह बैठे रहते हैं, सतर्क रहते हैं। आर्मी हमारी कैसी रहती है, रोज युद्ध नहीं करती है वो, लेकिन रोज प्रैक्टिस करती रहती है, कभी भी युद्ध होगा 15 साल में 20 साल में तो तैयार रहते हैं वो। तो इन्होंने संवर्तक बादलों को भेज दिया, बोले जाओ ब्रज को नष्ट करो, सब ब्रजवासियों को नष्ट करो, गायों को नष्ट करो, भूमि को नष्ट करो, सर्वनाश कर दो। तो संवर्तक बादल भी बोल रहे हैं, महाराज जी समय नहीं है, ये हमारा ड्यूटी का समय नहीं आया प्रलय का, अभी बहुत टाइम है उसके लिए। बोले मुझे कुछ पता नहीं है, मैं बोल रहा हूं मेरा आदेश है जाओ, और मैं भी पीछे आ रहा हूं तुम्हारे। तो भी चकित रह गए कि ऐसा कैसे ऑर्डर मिल रहा है बेसमय का। फिर गए और बरसाने लगे, इतना जल बरसाया भयंकर, अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रलय के उद्देश्य से, सर्वनाश उद्देश्य, सर्वनाश करने के उद्देश्य से बरसाया गया। सब ब्रजवासी परेशान हुए, लेकिन आपको भागवत में कहीं भी ऐसा पढ़ने को नहीं मिलेगा कि ब्रजवासियों ने कंप्लेंट किया कृष्ण के साथ जाकर कि तुम्हारी वजह से हुआ ये, तुमने कहा था हमको ऐसे करने के लिए, देखो क्या परिणाम उसका हुआ, हम पिताजी कह रहे थे सुनो हमारी बात मत करो ऐसे, तुमने नहीं मानी। सब मिलके अगर टूट पड़ते भगवान पर तो भी वो जायज था कि भाई ठीक है, तुम्हारे एक की जिद की वजह से पूरे ब्रज पर आतंक आ रहा है, तो कैसे बालक हो तुम, तुमको हम इतना प्यार करते हैं, इतना सम्मान देते हैं, इतना तुमको वैल्यू देते हैं, और तुमने हमारा सर्वनाश करने की योजना बना दी। एक व्यक्ति ने कंप्लेंट नहीं किया उनके पास, सब लोग गाय खो रहे हैं, बछड़ा खो रहे हैं, घर खो रहे हैं, सब खो रहे हैं, रो रहे हैं, पुकार रहे हैं कृष्ण कृष्ण महाभाव, उसी को पुकार रहे हैं। इतना होने पर भी जिसके अपेरेंटली मतलब तथा कथित कारण का वो क्या था, उनकी वजह से हुआ था ना वो, उन्हीं को पुकार रहे हैं ऐसे गुस्से से नहीं, लेकिन कृष्ण कृष्ण महाभाव पुकार रहे हैं उनको कि तुम ही हमारा सहारा हो, जो तुम कहोगे वैसा करेंगे, बाद में जो भी होगा तुम्हारे ही सहारे आएंगे। और ऊपर से क्या बोलते हैं वो, चलो मेरे साथ। अभी दूसरा क्या करेंगे लीला पता नहीं, एक तो तुमने लीला करवाई उल्टी, वो वर्षा हो रही है, अभी चलो चलो बोल रहे हैं, फिर भी चले उनके पीछे पीछे। श्रद्धा कितनी उनकी, हाँ प्रभु जी आप खड़े हो जाओ, श्रद्धा कितनी उनकी, इतना आतंक होने पश्चात भी उसी पर श्रद्धा रख रहे और जा रहे हैं उसके पीछे, बोले जा रहे हैं उनको कहां गए, वो प्रविष्ट वन में गए। और हम सबको अभी बच्चा बताएगा इसके आगे क्या होगा, ड्रामा होता है ना ड्रामा, तो बच्चा बैठा है फर्स्ट लाइन पे, बोलता है देखो देखो अभी पर्वत ऊपर उठेगा, देखो देखो वो पुली है, पुली उसके पुली खींचेगा ना तो ये ऊपर चलेगा, खाली उंगली लगा के रखा है वो आगे जाएगा। बच्चा बच्चा भी जानता है कि अभी क्या होने वाला है इसके आगे नाटक में। लेकिन विशेष बात यह है कि उस समय एक भी ब्रजवासी को पता नहीं था कि ये क्या करने वाले हैं, हमारी इस समस्या का समाधान किस तरह से होगा ये किसी को पता नहीं था, फिर भी कितनी दृढ़ श्रद्धा थी उनकी भगवान के ऊपर कि पता नहीं क्या करने वाले हैं, लेकिन जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, और जो करेंगे वो अद्भुत ही करेंगे, जो भी करेंगे हमारे कल्याण के लिए करेंगे, तो हमको केवल हाँ यस सर बोलना है उनको, बस यस सर बोलने के बाद है ना कि प्रहलाद ने भी मतलब हमको बताया कि उन्होंने यस सर उनको नहीं कहा था, हिरण्यकशिपु को, भगवान को हमेशा यस सर कहते रहे वो। भक्ति जीवन में यशस्वी होने का एक फॉर्मूला है, यस सर, जो हमको बताया जाएगा वो फॉलो करना है। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो भी चलेगा, फॉलो करना है बस। पिताजी ने कहा है फॉलो करते रहने का, उसका नतीजा, उसका निर्णय, उसका परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है। तो गए वहां पर और अहो आश्चर्यम, सबके आंखों के सामने इस 7 साल के बालक ने पर्वत को उठा लिया पूरा, मानो एक शहर उठा लिया, एक देश उठा लिया पूरा। सब लोगों को डर लग रहा है कि कैसे उसके अंदर चले जाएं, गिर जाए तो कैसे होगा, बालक है बेचारा कोमल, हाँ जिसकी त्वचा, जिसकी उंगलियां, जिसके चरण कमल इतने कोमल है, उंगली लगाने से भी लाल हो जाते, इतना बड़ा पत्थर उठा के खड़े कैसे होगा। तो भगवान ने विश्वास दिलाया, जब डरो मत आ जाओ, और फिर अनंत लीलाओं का प्रारंभ हुआ उनके अंदर, पांचों रसों की लीला आरंभ हुई। तो उठा के खड़े तो सब लोग, माता मैया पापा सब साथ में आ गए, बोले अरे बालक कहीं थक न जाए, बहुत देर तक उठा लिखा रखा है। तो मैया कह रहे अरे सुबह से माखन नहीं खाया तुमने, आज थोड़ा माखन खा ले, थोड़ा सा कमजोरी दूर हो जाएगी तुम्हारी। देखो देखो लग रहा है पसीना आ रहा है मुंह से उसके, पसीना तो नहीं आ रहा है, देखिए मैया का प्रेम ऐसा है ना, लग रहा है उसको कि पसीना आ रहा है, थक गया है, लंबी लंबी सांस ले रहा है, तो चिंता हो रही है वात्सल्य की वजह से। वात्सल्य का परिणाम ऐसा है कि जो नहीं है वो दिखाई पड़ रहा है उसको कि भाई पसीना आ रहा है। तो अरे भाई बेटा तू थोड़ा माखन तो खा ले, तो एक हाथ से माखन खा रहे हैं और मैया माखन खिला के बोल रही है, अपनी सखियों को बोल रही है, जो बड़ी बूढ़ी गोपियां हैं उनको बोल रही है, देखो देखो ये माखन मैंने रोज खिलाया ना इतनी मेहनत से, इसलिए आज उठा पा रहे हैं वो। वो क्या है, वो उसके पास 100 पद्मगंधा गाय है, बड़ी गिनी चुनी गाय है, जिसका दूध का सुगंध जो है वो कमल का है, और वो कमल के सुगंध के दूध का दही जमाती है, फिर कमल के सुगंध का मक्खन बनता है, उसी का घी बनता है, उसके दही बनता है, इतना सुंदर स्वादिष्ट और दिव्य सिलेक्टेड गायों का बनाया हुआ जो मक्खन है वो रोज बनाती है ठाकुर जी के लिए। बोले उसकी वजह से आज ये काम आया, देखो इतनी मेहनत करती हूँ मैं, आज उसका फल देख रहे हो तुम। ग्वाल बाल जो है वो कह रहे हैं नो, ये माताओं को पूरा ज्ञान नहीं है, वो तो अपने ऐसे ही वात्सल्य में कुछ कह देते हैं, इनको पता नहीं है कि हमने इनको रोज कुश्ती का ट्रेनिंग दिया था, अरे ये सुदामा रोज डिफीट करता है उसको। हमारे में से हर आदमी उसको डिफीट करता है, तो हमने उसको डिफीट कर करके, परास्त कर करके, पराजित कर करके उसको ट्रेनिंग दिया था, तब उसके बाजू इतने मजबूत हो गए हैं। आज हमारी जो वर्जिश थी उसके साथ में की हुई, ट्रेनिंग दिया था उसको, वो आज काम आ रहा है देखो। तो गोपियां कह रही नो, ये बालकों को कुछ पता नहीं, तो गाय चराने वाले बालक इनको क्या है नॉलेज। वो सब चर्चा हो रही है तो गोपियां कह रही नहीं आप लोगों को पता नहीं है। बोले क्या है, क्या कारण है फिर? बोले हमारी श्री जी जो है उनको तिरछी नजर से देख रही है, उस तिरछी नजर में इतनी शक्ति है कि उसके बाजू में शक्ति उत्पन्न हो रही है, इसलिए वो उठा पा रहा है। बोला अच्छा, तो दिखा उन्होंने कि श्री जी उनको देख रही है, वो भी उनको देख रहे हैं, और दोनों देख रहे हैं तो बलराम जी कृष्ण को देखते हैं और कृष्ण बलराम को देखते हुए देखते हैं, तो नजर को झुका लेते हैं, लेकिन वो सब गोपियां देख, बाल जो है वो देख रहे हैं कि कृष्ण भगवान को तिरछी नजर से राधा रानी देख रही है। तो फिर ऐसे गोवर्धन के अंदर मतलब नीचे बहुत लीलाएं हुई, बहुत सारी लीलाएं हुई। बीच में बड़े ग्वाल बाल क्या सोच रहे हैं, नहीं फिर भी बालक तो है ना, अभी तुमने माखन बनाया सही बात है, मैं सब मानता हूं, लेकिन थक गया होगा बेचारा, उसका हाथ दुखता होगा, तो कह रहे हैं बालक को, कह रहे हैं कि कम से कम हाथ तो बदले करो, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में शिफ्ट करो ना आप, थोड़ा इसको विश्रांति करेंगे, उसको मसाज करेंगे हम दूसरी साइड से, फिर आप इसको, तो ऐसा ही खड़ा है। तो फिर वो क्या करते हैं, डंडे लगाते हैं उसके हाथ के नीचे, ऐसे सपोर्ट देते हैं उसके हाथ को, और कुछ वाल बाल यहाँ सपोर्ट देते हैं और कुछ वाल बाल जो है सारे गोवर्धन के नीचे डंडे सपोर्ट देते हैं, और सबको लगता है कि एक्चुअली हम लोग ही उठा रहे हैं, वो बेचारा ऐसे खड़ा है बस। सब ये वात्सल्य प्रेम है ना, वो ऐसा उसका भी एक मोह होता है, हाँ जो दिव्य मोह कहते हैं उसको, उस मोह के वजह से वो व्यक्ति ये जानता नहीं है कि सत्य क्या है, सत्य क्या है, उनको जानता ही नहीं कि ये भगवान है, उनका वात्सल्य जो है वो भगवत्ता के ऊपर भी हावी हो जाता है। तो वो सब लोग डंडा लगा के खड़े हैं, तो भगवान कहते कि थोड़ा सा मजाक होना चाहिए, तो भगवान ने पर्वत को थोड़ा टेढ़ा कर दिया। तो सब लोग डर गए, अरे 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 अरे, हमने आप ही उठा रहे हो। सबको समझ में आया कि हमने उठा रहे हैं, यही उठा रहे हैं, ऐसा है। उसकी कहानी ऐसी है कि एक बार पार्वती जी ने त्रैमासिक व्रत किया था, उसका वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है। राधा और कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए उन्होंने त्रैमासिक व्रत किया था, तो बहुत लंबा वर्णन है उस व्रत का। वो व्रत की पूर्ति के रूप में उन्होंने सारे ऋषि मुनि, सप्तऋषि, देव देवता, भगवान, उनके अवतार और सभी लोगों को बुलाया था उन्होंने। उन्होंने अगस्त्य मुनि को भी बुलाया था। वे अगस्त्य मुनि ऐसे विचित्र मुनि हैं, इतने सिद्ध महाराज है वो, कि उन्होंने एक बार क्रोध से समुद्र को पी लिया था एक ही घूट में, बड़ी लीला है वो। तो उनका एक ख्याति थी, उनकी विशेषता थी कि वो जहां भी जाते हैं भोजन के लिए वो लास्ट में बैठते हैं पंगत में। उसमें क्या होता है पंगत का, मालूम है आपको रहस्य क्या होता है? तो जवान लोग होते हैं ना, बहुत बुद्धिमान होते हैं, वो सब लोग एंड में बैठते हैं, क्योंकि थाली भर के आइटम लेके आएंगे ना, तो एक एक देते आएंगे, एंड में पूरा ऐसे थाली खाली कर देते हैं, मतलब नया थाली भर के लाओ, ये खाली करो यहाँ पर। तो वो जान बूझ के एंड में बैठते थे, ताकि उनका जो थाली था वो पूरा पर्वत समान सब्जी, पर्वत समान भाजी, पर्वत समान राइस, पर्वत समान मिठाई, सब ऐसे। तो पार्वती को चिंता थी कि मैंने अगस्त्य मुनि को भी आमंत्रण दिया है, तो मेरा शायद, मैं अन्नपूर्णा जरूर हूँ लेकिन अगस्त्य मुनि के सामने अन्नपूर्णा कैसी, वो शायद मेरा प्लान फेल कर सकते हैं, मेरा भोजन अपूर्ण हो सकता है और मेरे भोजन का जो प्रयोजन है वो सिद्ध नहीं हो सकता है। तो कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा इनको। तो वो लास्ट में अगस्त्य और सेकंड लास्ट में कृष्ण। तो ये सबको परस्ते उनका भोजन समाप्त होने को आता है, तो भगवान और सब पंगत जो है वो भोजन खा के उनका हो गया, लेकिन अगस्त्य मुनि अभी शुरुआत भी नहीं किए हुए। तो तुरंत भगवान उठ जाते हैं पंगत से। तो ये संतों का अपमान बताया गया, अगर कोई वरिष्ठ वैष्णव भोजन कर रहा है फिर भी कनिष्ठ वैष्णवों को उठना नहीं चाहिए। शायद उनका हो भी गया होगा, वो डाइट पे होंगे तो कम खाते होंगे शायद, लेकिन उनको बैठना चाहिए। जब तक वरिष्ठ वैष्णव नहीं उठेंगे तब तक उनको अपनी जगह बैठना चाहिए, जब वरिष्ठ वैष्णव उठेंगे तो उनके पीछे हमको उठना है। तो कृष्ण तो जन्म मतलब उम्र से तो कनिष्ठ ही थे, अगस्त्य मुनि बुजुर्ग थे, तो उठ गए। तो अगस्त्य मुनि को गुस्सा आया, तो तुमने कहा कि तुमने तो पानी पीने का मौका भी नहीं दिया, तो पानी हम लोग पीते हैं भोजन के बीच में, थोड़ा आधा भोजन हो गया तो थोड़ा जल पीते हैं, फिर आधा भोजन और बाद में करते हैं, तुमने इंटरवल को आने ही नहीं दिया, उसके पहले तुम उठ गए। बोले कोई बात नहीं, आपको जल पिलाऊंगा समय पर। तो जब उन्होंने झुकाया ना उसको ऐसे, तो अगस्त्य मुनि ने पूरा ऐसे जल पिया उसका। तो ये लीला भी साथ में हुई उसकी, अगस्त्य मुनि को जो वादा किया था उसका जल जो भगवान ने उनको गोवर्धन को जब झुकाया तो जितना जल बह रहा था वो सब उनको दिया। एक गोवर्धन लीला की और खासियत है कि वो चक्र को भगवान ने आदेश दिया, जब गिरिराज को उठाया तो चक्र को आदेश दिया एक भी बूंद जल जमीन पर उतरना नहीं चाहिए। वे हम लोग बोलेंगे कि बारिश हो रही है बहुत सारी, हम छतरी उठाएंगे, लेकिन छतरी उठने के बाद भी लोग इतना मान रहते हैं ना बंबई में, छतरी खाली क्या करती है, हमको ऐसा आभास देती है कि हमारा सर बचा हुआ है, लेकिन सारा पूरा गिल्ला होता है और छतरी के अंदर से भी हवा पानी आता है और बालों को भी गिला कर लेता है, लेकिन हमको एक ऐसा भ्रम रहता है कि हमारा छतरी है ना, अभी भी हम बचे हुए हैं, लेकिन यहाँ तक पानी भर रहा है, यहाँ तक भी भर सकता है वो बॉम्बे में, और उसमें चलना पड़ता है। भगवान को पता था कि अगर मैं छतरी को उठा लिया और जल नीचे से भर गया तो सब डूब जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि चक्र को आदेश दिया कि ऐसे आप चक्र लगाओ पूरे गोवर्धन के आसपास कि अपनी अग्नि और प्रकाश से सारा जल को बाष्प बना दो और उसको लौटा दो ऊपर आकाश में, वो ऊपर से फेंक रहा है ना, उसको ऊपर भेज दो। तो चक्र ऐसा गोल गोल घूमता रहा कि इतनी घनघोर मूसलधार वर्षा गोवर्धन के ऊपर होते हुए भी एक भी बूंद जल जमीन पर नहीं गिरा। तो चक्र ने इस लीला के बाद में भगवान से विनती किया कि हमको भी यहाँ पर आश्रय दो। तो भगवान ने यहाँ पर उनको गोवर्धन के बीच में मानसी गंगा के पास में चक्र को स्थान दिया कि आप यही निवास करो, उसका नाम है चक्रतीर्थ। और चक्रतीर्थ के पास ही सनातन जी गोस्वामी ने अपना भजन कुटी बनाया था और बहुत संतों ने भी बनाया हुआ है, मानसी देवी का मंदिर भी वही है। तो इस तरह से 7 दिन 7 रात अखंड वर्षा होती रही और दुख तो दूर रहा कि भाई हमारा घर डूब गया, हमारे जवान जानवर घूम गए, सब लोग जितने भी जीव थे जो तथाकथित रूप से मरने वाले थे वो सब लोग गोवर्धन के नीचे तले आनंद बना रहे थे। उनको लग रहा था कि 7 दिन ये समाप्ति न हो समय, ये ऐसा ही चलता रहे, हम सब लोग भगवान को निहारते रहें। ना उनको भूख लगी, ना उनको प्यास लगी, ना उनको नींद आई, ना वो थक गए। क्या कारण है उसका? हाँ, भगवान की 64 गुण है भगवान के। हाँ, उसमें 4 आखिरी गुण जो है वो केवल भगवान के पास है। जो विष्णु स्वरूप भगवान के अवतार हैं सब, उनके अंदर 60 गुण होते हैं, और 60 गुण अनंत विष्णु में अनंत मात्रा में होते हैं। लेकिन आखिरी 4 गुण जो है वो सब में होते हैं, लेकिन चरम सीमा पर जो आखिरी गुण है वो केवल भगवान के पास है। उनमें से एक है वेणु माधुरी। तो वेणु बजाते हैं तो ग्वाल बाल भी वेणु बजाते हैं, लेकिन भगवान जैसा नहीं बजा सकते। जो परिणाम भगवान के वेणु बजाने से होता है वो नहीं होता है। लीला माधुरी, जो लीला करते हैं, इतनी अद्भुत लीला है भगवान की, वो कोई भगवान का अवतार उसकी तुलना नहीं कर सकता है। नरसिंह देव, श्री प्रभु रामचंद्र, वराह देव, कुर्म अवतार, वो सब उनकी लीलाओं की तुलना नहीं कर सकते। इतनी अद्भुत लीला भगवान, कोई भी लीला ऐसी नहीं जब भगवान ने आग पी होगी, लेकिन कृष्ण लीला में भगवान आग भी पीते हैं। पर्वत को उठाया उन्होंने, इतने रूपों में विस्तारित कर दिया अपने आप को, रासलीला में और गौचारण में, अनंत प्रकार के। और कभी भी यहां पर आकर कोई शस्त्र वस्त्र नहीं उठाया उन्होंने, कोई शस्त्र नहीं उठाया, केवल हाथ से, कभी मुष्टि से, कभी इससे कभी उससे। केवल 2 बार उन्होंने थोड़ा बहुत सिद्धि दिखाया, वो भी किसी के अपराध, मतलब किसी के सामने नहीं। जब अगासुर के मुंह में चले गए, अगासुर का मुंह बंद हो गया तो अंदर से वो बढ़ गए, लेकिन किसने देखा नहीं कि उन्होंने अपना सिद्धि दिखाया। अदृश्य रूप से उन्होंने सिद्धि का उपयोग किया केवल 2 बार, एक बार बकासुर के शरीर के अंदर और एक बार अगासुर के शरीर के अंदर, बस। लेकिन अन्य सारे समय पर केवल निहत्ते होते हुए उन्होंने राक्षसों का वध किया, निहत्ते होते हुए गिरिराज को उठाया, और ऐसे अद्भुत लीलाएं की उन्होंने। राक्षस कालिया को दमन करते हुए इतना सुंदर नृत्य किया जो उसको मृत्यु समान, काल के समान महसूस हो रहा है, और सब गोपियां इस दिव्य नृत्य का आनंद ले रहे हैं। वो देवता लोग प्रश्न कर रहे हैं कि कौन सा ताल है, कौन सा ये क्या कहते, ताक थई ता थई, क्या है ये, समझ में नहीं आ रहा है उनको। उनका ताल और उनका कदम, उनके पदलालित्य क्या है, वो समझ में नहीं आ रहा है उनको। तो एक जगह पर ऐसा अद्भुत नृत्य हो रहा है और एक जगह किसी की मृत्यु हो रही है। ऐसा अद्भुत लीला कोई करता है क्या? पर भगवान ही कर सकते हैं। तो लीला माधुरी, और तीसरी है प्रेम माधुरी। इनका जो प्रेम है अपने भक्तों पर, वो कोई भी अन्य अवतारों का प्रेम नहीं हो सकता है। ऐसा अद्भुत प्रेम करते हैं वो, इतना प्रेम करते हैं कि वो अपना भगवान का पद भी उस प्रेम के लिए छोड़ देते हैं, वैकुंठ का ऐश्वर्य भी छोड़ देते हैं, और आप आकर चोरी करके उनका माखन खाते हैं। केवल प्रेम की वजह से सब कुछ छोड़ देते हैं, अपने आप को दास बनाते हैं, अपने आप को सेवक बनाते हैं, समर्पित कर देते हैं उनके चरणों में। इतना प्रेम है उनके भक्तों के ऊपर। और आखिरी क्या है उनका? हाँ, रूप माधुरी। उनका जो रूप है, जिस प्रकार से कृष्ण भगवान का अवतार है, उनके रूप, हर एक अवतार बहुत मधुर है और उनका सौंदर्य बहुत दिव्य होता है। नरसिंह भगवान भी बड़े सुंदर थे, वराह भगवान भी बड़े सुंदर थे। यहाँ तक कि वराह भगवान को देखकर कई कन्याएं मोहित हो गई थी, जिनको वराह भगवान ने वरदान दिया कि कृष्ण लीला में गोपी बनकर आना। मत्स्य अवतार को देखकर समुद्र कन्याएं मोहित हुई थी। आप बोलेंगे मत्स्य में क्या इतना अट्रैक्टिव है? जब आप मत्स्य अवतार देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी तो आपने मछली देखी है जिसकी बहुत बदबू आती है समुद्र किनारे में, लेकिन मत्स्य अवतार तो दिव्य स्वरूप भगवान का। तो मत्स्य अवतार, वराह अवतार, कूर्म अवतार, हर एक अवतार में देखकर भगवान के लिए कई स्त्रियां मोहित हो गई थी और लालायित हो रही थी कि हमको वो आनंद दे दीजिए जो पति पत्नी का और सखी सखियों का होता है। तो भगवान ने कहा इस अवतार में नहीं, जब कृष्ण अवतार में आऊंगा तो आना आप। तो ये भगवान का जो रूप है बहुत दिव्य है, और सारे अवतारों का रूप दिव्य होने पर भी कृष्ण भगवान का जो रूप है वो अलौकिक है, अनोखा है, अतुलनीय है, इनकम्पेरेबल। तो 7 दिन 7 रात उनको ना भूख लगी, ना प्यास लगी, ना नींद आई, ना और कोई थकान आई, क्योंकि वो भगवान की रूप माधुरी का आस्वादन कर रहे थे अपने नेत्रों के द्वारा। एक तो भगवान इतने सुंदर स्वयं, ऊपर से त्रिभंग स्वरूप उनका, 3 जगह झुके हुए हैं, ऊपर से बांसुरी बजा रहे हैं एक हाथ से, ऊपर से एक हाथ से गोवर्धन धारण किए हुए, कितना सुंदर दर्शन है उनका। एक हाथ में गोवर्धन, एक हाथ में मुरली, 3 जगह मुड़े हुए हैं और सबको स्मित हास्य दे रहे हैं और सबको चेतना दे रहे हैं, यहाँ तक कि गोवर्धन को भी दे रहे हैं जो कष्ट भोग रहा है ऊपर। उसको भी चेतना दे रहे हैं, उसको भी आनंद दे रहे हैं। इस सौंदर्य को प्राप्त करते हुए, ग्रहण करते हुए, अवलोकन करते हुए ना किसी को प्यास लगी, ना किसी को भूख लगी। फिर 7 दिन के 7 बाद लीला समाप्त क्यों हुई? क्योंकि संबर तक का जो स्टॉक था पानी का वो खत्म हो गया, नहीं तो लीला और चलती। तो भगवान ने क्या दिखाया कि इंद्र ने अपना सबसे बड़ा बल जो है उसका इस्तेमाल किया और भगवान ने अपने शरीर के सबसे कमजोर हिस्से से उसको परास्त कर दिया, है ना। ये उंगली जो है ना अपने शरीर में सबसे कमजोर होती है, इससे आप कुछ नहीं कर सकते। तो अपने शरीर के सबसे कमजोर हिस्से से इंद्र का सबसे बड़ा बल जो है उन्होंने एकदम आसानी से परास्त कर दिया। इंद्र थक गए, इंद्र के बादल भी थक गए, बोला अभी जल ही नहीं बचा है। तभी इंद्र के अंदर प्रकाश आया कि ऐसा तो मेरे भगवान ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता है। तब उनको ये अनुभूति हुई कि ये मेरे भगवान ही है, मेरे आराध्य दैवत है। तो पश्चाताप हुआ, नीचे आए, यहां से आए तो भगवान ऐसे, यहां से आए तो उन्होंने यहां देखा, फिर वहां से आए तो उन्होंने यहां से देखा, सामने से तो उधर देखा, समझ गए कि भगवान हमें देखने के मूड में नहीं है। तो बहुत डर गए, वो सीधे बृहस्पति के पास गए, गुरु है ना उनके, वो भाई क्या करें अभी, गुरु महाराज बड़ा अपराध हो गया है। हाँ, उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए कोई चारा नहीं है, तुमने ऐसा अपराध किया है, घनघोर अपराध किया है, पता नहीं कैसे बच पाओगे। एक ही चारा है तुम्हारे लिए, अगर कोई तुम भक्त का आसरा लोगे और भक्त तुम्हारी सिफारिश करेगा भगवान के लिए पास, तो तुम्हारा कोई चांस है, नहीं तो तुम्हारा चांस गया अभी। तो इतने बड़े इंद्र महाराज, इतने ऐश्वर्य संपन्न, सभी देवताओं के राजा, इतने शक्ति संपन्न है, उनके लिए इतना भगवान ने अधिकार देकर रखा है, वो एक सीधे साधे सुरभि गाय के पास आए, सिंपल सी, और उसके चरणों में गिरे। और चरणों में गिरकर उन्होंने सिफारिश करने को विनती किया कि कृपा करके मुझे जरा भगवान के पास ले जाओ, तो माफी करवा मेरी। तुरंत सुरभि गाय तैयार हो गई, बड़ी दयालु, बड़ी करुणामयी, तुरंत इंद्र को भगवान के पास ले गई। इस गिरिराज के उस तरफ आप परिक्रमा करेंगे तो इंद्र का अपराध भंजन जगह है, वहां पर इंद्र सुरभि को लेकर भगवान के पास आए थे। और सुरभि जैसे ये जो समाप्त हुई लीला, जब ये 7 दिन खत्म हो गए, बारिश खत्म हो गई, पानी खत्म हो गया, तो भगवान ने उसको नीचे रख दिया, सबको पहले कहा कि जाओ बाहर जाओ अभी, तो उनको हिम्मत नहीं हो रही थी कि बाहर अभी तो वर्षा हो रही है, उन्होंने कहा नहीं नहीं जाए, कोई वर्षा नहीं हो रही, जाओ। सब लोग बाहर निकल गए, भगवान ने अपनी जगह पर पर्वत को रखा। फिर भगवान कुछ दिन बाद में ब्रजभूमि का कितना डैमेज हो गया है उसका देखने के लिए वो ऐसे घूम रहे थे, यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है। तो उस समय वहाँ पर जब घूम रहे थे उस तरफ गिरिराज के, तो वहाँ पर आए सुरभि को लेकर इंद्र भगवान, और भगवान से माफ़ी मांगी उन्होंने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस समय इंद्र ने भगवान की शरण ली सुरभि के माध्यम से, तब पहली बार भगवान ने उनकी तरफ मुड़के देखा। भगवान किसी पदवद को वैल्यू देते नहीं, होगा कोई बड़ा अधिकारी तो भगवान के लिए कोई वैल्यू नहीं, भगवान ने सारा अधिकार सबको दिया है। हर चीज जो चमकती है और दमकती है उसका सोर्स भगवान है। भगवान कहते हैं गीता में, जो हर चीज आपको चमकती नजर आती है ऐश्वर्य से पूर्ण, वो केवल मेरे ऐश्वर्य का एक तुच्छ हिस्सा है, जस्ट स्पार्क ऑफ माय स्प्लेंडर। तो उनके सामने हम लोग क्या गर्व करेंगे, हमारा अधिकार कितना बड़ा है, कितना धन दौलत हमारे पास में, कितना गर्व करेंगे। जैसे हाथी के सामने चींटी आएंगी बोलेंगी पंजा लड़ाओगी, तो क्या हाथी बोलेगा उसको, क्या इसका पंजा लड़ाएंगे, लेकिन श्वास भी छोड़ेंगे तो भी उड़ जाएगी हवा से। तो वैसे हम लोग आ जाते हैं भगवान के सामने, मैं डॉक्टर हूँ, मैं अधिकारी हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, ये सब कुछ उनका दिया हुआ है, सब नश्वर है और सब कुछ वो छीन ले सकते हैं समय के अनुसार। लेकिन जब नम्र होकर आता है तब वो स्वीकार करते हैं। और सिफारिश बहुत जरूरी है, केवल सिफारिश यहाँ पर नहीं चलती है, सिफारिश वहाँ पर भी चलती है, लेकिन यहाँ पर गलत आदमियों की सिफारिश से काम होता है, वहाँ पर भक्तों की सिफारिश से काम हो जाता है। जो भक्तों का सहारा लेता है, उनकी शरण में जाता है और उनके कहने अनुसार करता है, तो फिर वो सफल हो जाता है। तो भगवान ने इंद्र को माफ़ कर दिया और कहना दोबारा नहीं करना गलती ऐसी। तो इंद्र ने उनका अभिषेक करने का योजना बनाया। उनको बड़ा पश्चाताप हो रहा था कि हमने इतना बड़ा अपराध किया भगवान का। लेकिन एक तरफ से भगवान जरा मन में खुश थे क्योंकि लीला के माध्यम से सारे भक्त एक साथ में आ गए। जब ब्रह्मा जी ने बच्चों को चुराया था तो उनको ब्रह्मा जी ने अलग कर दिया था, पूरा भक्तों से विरोह कर दिया था, विरह कर दिया था उनका। इंद्र की ये अपराध की वजह से भक्त लोग साथ में आए थे, बड़ा आनंद लिया उन्होंने, तो इसलिए उनको माफ कर दिया उन्होंने। फिर भी इंद्र को पश्चाताप हो रहा था, उन्होंने कुछ करने की इच्छा रखी तो सभी देवताओं को आदेश दिया अपने अपने लोक से श्रेष्ठ वस्तुओं को लेके आओ। तो वरुण ने सिंहासन लेके आया, वायु छत्र लेके आया, ब्रह्मा जी ने और कुछ लाया, और सुरभि गाय ने आकाशगंगा का पानी लाया, सॉरी इंद्र के ऐरावत ने सुंड में आकाशगंगा का पानी लाया, सुरभि ने अपना दूध लाया, बाकी सबने हीरे जवाहरात अलंकार सब भगवान को प्रस्तुत किए भेंट वस्तु, और इंद्र ने ऐरावत के द्वारा आकाशगंगा का पानी और सुरभि के जल दूध से भगवान का अभिषेक किया और भगवान को गोविंद नाम से स्थापित कर दिया, घोषित कर दिया। तब से भगवान का नाम गोविंद पड़ा, जो गाय के मालिक है, भूमि के मालिक है, और किसके मालिक है, इंद्रियों के मालिक है, स्वामी। उस समय गोपियों को खबर मिली कि भगवान का अभिषेक हो रहा है, उनका गोविंद से नामकरण हो रहा है, तो गोपियों ने राधा रानी को इमली तला में अभिषेक करवाया और उनको वृंदावनेश्वरी के रूप में घोषित कर दिया। तो ये सब छुप छुप के ग्वाल बाल देख रहे थे, इतने बड़े बड़े देवता प्रकाशमान, किसके शरीर में हजारों आंखें, किसके पांच मुख, किसके चार मुख, किसके क्या क्या, छुप छुप के देख रहे थे। सब ये समाप्त करके सारी दिव्य वस्तुएं अलंकारिक वस्तुएं छोड़ के यहीं चले गए सब देवता लोग। तो सब ग्वाल बाल को बुला के लाया उन्होंने, पापा मम्मी को, देखो देखो हमने देखा, तो लग रहा था कि ये तो मजाक कर रहे हैं, उनको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन ग्वाल बाल ने अपने आंखों से दर्शन किया था सब अभिषेक का। फिर नंद बाबा सॉरी फिर ग्वाल बालों ने विचार किया कि हम भी अभिषेक करेंगे, तो उन्होंने दो शिलाएं एक ऐसी और ऐसी रखी, हाँ, और बड़े प्रेम से भगवान को बिना किसी ऐश्वर्य से बहुत सादगी में अभिषेक किया उनका। और भगवान कहते हैं कि जितना आनंद मुझे इंद्र के अभिषेक में हुआ उससे कोटि कोटि गुना आनंद उनको ग्वाल बालों के अभिषेक में हुआ, क्योंकि वो ऐश्वर्य से इतना प्रभावित नहीं होते हैं, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं प्रेम से। इंद्र ने जरूर उनका अभिषेक किया, पश्चाताप की भावना से किया, सच्ची भावना से किया, लेकिन ग्वाल बालों के प्रेम के साथ वो तुलना नहीं कर सकते। तो ग्वाल बालों का प्रेम है तो ग्वाल बालों को सीधे से लगा रखते हैं भगवान, और इंद्र तो अपने दरबार में रखते हैं, ऑफिशियल रिलेशनशिप है उनका, इसलिए वो उन्होंने ग्वाल बालों के अभिषेक में अनंत कोटि गुना अधिक आनंद पाया। और फिर वो जल जो है अभिषेक का, वो गोविंद कुंड के रूप में उसका निर्माण हुआ, सारा जल जो दूध है वो गोविंद कुंड के रूप में उसका जलाशय निर्माण हुआ, और गोविंद कुंड जो है भगवान का चरणामृत है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो गोवर्धन की लीला है इसमें हम कई शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं, कि हमारा जो भक्ति का जीवन है इसमें हमको भी कभी कभी अच्छा पद प्राप्त होता है, कोई टेंपल प्रेसिडेंट बन जाता है, कोई मठाधीश बन जाता है, कोई कुछ डिपार्टमेंट का अधिकारी बन जाता है, हमारे पेशे में हमको कुछ प्रगति होती है, धन दौलत मिलती है, सम्मान मिलता है, अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन हमें कभी भी उस पर गर्व नहीं करना चाहिए। इसकी अनुभूति रखना बहुत ज़रूरी है कि ये सब भगवान के द्वारा दिया हुआ है, कभी भी वो उसको वापस ले सकते हैं। एवरीथिंग इज़ अ प्रॉपर्टी, बोरोड प्रॉपर्टी ऑफ द लॉर्ड। हम सोचते हैं बहुत सीनियर हो गए हैं अभी, तो आप तो कल ज्वाइन किया है, हम तो 15 साल से काम कर रहे हैं, तो वो सीनियर एम्प्लॉयज जूनियर को हैरेस करते हैं ये सोच करके हम लोग 15 साल के एम्प्लॉय हैं, आप तो कल आए हो, उसको बोलते हैं यहाँ से ये सामान लेके आओ, उधर से लेके आओ, वो जाके पूछा क्या हो लेकिन अधिकारी जो उनके ऊपर के हैं वो एक क्षण में आपके 15 साल का जो एक्सपीरियंस है उसको कट कर सके, आपको डिस्चार्ज कर सकते हैं। वो सारी शक्ति जो है आपको सीनियरिटी की, वो आपके अफसर से प्राप्त हो रही है, आपको वो जब चाहे आपको ट्रांसफर कर सकता है यहाँ से दिल्ली, फिर वहाँ पर आप नए हो जाएंगे, यहाँ पुराने हैं वहाँ पर नए हो जाएंगे, फिर यहाँ पर जो कष्ट हो रहा है वो आपको वहाँ प्राप्त होने लगेगा। इसलिए कभी भी हमारे भौतिक जीवन में, अपने गृहस्थी जीवन में, अपने काम प्रोफेशनल जीवन में, कहीं भी किसी भी चीज़ पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह सब चीज़ है ना, इससे बोरोड प्रॉपर्टी, इससे बोरोड वेल्थ, किसी ने दी हुई शक्ति है वो, कभी भी वो नष्ट हो सकती है, और गलती हो भी जाती है तो भक्तों का सहारा लेना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में अगर कई गलतियां होती है हमारे हाथ से, स्वाभाविक है, लेकिन गलती होने के बाद में हम क्या करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गलती होने के बाद में हमको वैष्णवों का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया में वैष्णवों के अलावा सच्चे हित चिंतक और कोई नहीं है। बाकी सारे जितने हमारे रिश्तेदार हैं, जितने हमारे परिवार के जन हैं, जितने मित्रगण हैं, वो सब सीमित हैं, दे आर ऑल लिमिटेड, दे कैन नॉट सेव यू। भक्तगण जो होते हैं वो बड़े दयालु होते हैं, वो निरपेक्ष भावना से निस्वार्थ रूप से करुणामयी होते हैं। करुणामयी सब लोग होते हैं, लेकिन कुछ स्वार्थ रहता है उनका, लेकिन ये भक्त लोग जो होते हैं वो निस्वार्थ होते हुए करुणामयी होते हैं। निस्वार्थ आपसे कुछ भी अपेक्षा न करते हुए आपकी सदैव सेवा करने को तैयार रहते हैं, आपको मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो सुरभि ने ये सोचा नहीं कि अरे अभी आए हो, अब तक तो इतना बड़ा गर्व कर रहे थे, जाओ 10 दिन के बाद आओ। सबको आपने कष्ट दिया, हमको भी कष्ट दिया आपने, और अभी आप गिड़गिड़ा रहे हो हमारे पास आके, चलो दूर हटो यहां से। तत्क्षण आसरा दिया, और तत्क्षण पूरा जो उनके प्रति आतंक हुआ था इंद्र के कारण, उसको भी उन्होंने मन पे नहीं लिया, उसको भी गंभीरता से स्वीकार नहीं किया कि भाई इन्होंने ही हमारा अपराध किया था, अभी हम उसका बदला ले लेंगे, तड़पाएंगे उसको फिर ले जाएंगे, ऐसा भी नहीं किया। जब देखा कि कोई व्यक्ति सिंसियरली प्रामाणिक भाव से अपराध करने के बाद में भगवान की शरण लेने को तैयार है, तो तुरंत अपने ऊपर हुआ हुआ आतंक भी भूलकर वो तुरंत उसको भगवान के पास ले गए, तुरंत माफी करवाई। ये भक्तों का लक्षण है, परम दयालु होते हैं। इसलिए वैष्णवों का सहारा जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी सीख है इसके अंदर, इस लीला के अंदर ब्रज में कई स्थान निर्माण हो गए। ऐरावत ने जो जल लाया था वो ऐरावत कुंड के रूप में प्रकट हो गया। सुरभि के जहां पर माफी दी गई वो सुरभि कुंड उत्पन्न हो गया, और 108 कुंड अप्सराओं ने बनाए वो उत्पन्न हो गए, और अप्सरा कुंड बना, नवल कुंड बना, और उसके पास में भगवान ने उसके बाद में बहुत लीलाएं की, अनंत लीलाएं की। जो स्थान उत्पन्न हो गए वो तो वैसे रह गए, उसके बाद के जीवन में जितना भी समय भगवान ने यहां बिताया, उस पवित्र स्थानों के आसपास भगवान ने लीलाएं करके उनको और दिव्य बना दिया। नवल कुंड में भगवान पिघल गए, अप्सरा कुंड में अप्सराएं पिघल गई, उसके आसपास में भगवान ने रासलीला रचाई, उसके आसपास में भगवान ने 24 अवतारों का निर्माण किया। अप्सरा कुंड जगह है ना, वहां पर उसके किनारे पे भगवान के 24 अवतारों का उगम होता है, और वहीं से वो जाके लीला करते हैं ब्रह्मांडों में जाके। ऐसा दिव्य भगवान ने उन स्थानों को बनाया जो अनायास ही गोवर्धन के लीला में उत्पन्न हुए थे, ऐसी अद्भुत लीला है ये। और इसके आसपास भगवान ने अनंत लीलाएं की। तो इस तरह से गिरिराज गोवर्धन के आसपास बहुत सुंदर लीलाएं हैं। ये जो कुंड है दान निवर्तन कुंड, इसका लीला ऐसा है कि गोवर्धन में कई घाटियां हैं, घाटियां यानी एक दान घाटी जो है वो उनका गर्दन है, वो बात अलग है, लेकिन घाटी की व्याख्या ऐसी है कि घाटी यानी वो जगह जिसमें से आप गोवर्धन के एक तरफ से दूसरी तरफ पास हो सकते हो। घाटी जमीन के सर पे होती है, पर्वत ऊपर होता है जमीन से, लेकिन ऐसी कई घाटियाँ, एक कुसुम सरोवर के पास घाटी है, एक यहाँ दान घाटी है, ऐसे कई घाटियाँ हैं जहाँ से गोपियाँ बरसाने की ओर से आती थी, और गिरिराज पर न चढ़ते हुए गिरिराज की घाटी से गिरिराज को पार करके मथुरा में दही बेचने के लिए जाती थी। तो एक दिन ऐसे ही आ रही थी वो, उन्होंने सुना जाते जाते कि नंद बाबा का बड़ा महायज्ञ हो रहा है गोवर्धन गिरिराज में, तो उनको लगा कि अच्छा है, हमारे मेहनत का फल जो है घी इनके यज्ञ में पड़ेगा तो बड़ा पुण्य मिलेगा। तो वो घूम गई वहां से और इस तरफ आने लगी जहां पर यज्ञ हो रहा है। तो आप जानते हैं ना कि कृष्ण के पास भी बहुत तोता है, राधा रानी के पास भी है, वृंदा रानी के पास भी है, तो सब लोग वो इतने चतुर हैं कि वो सब जगह घूमते रहते हैं, जहां पर भगवान की लीला हो रही है वहां पर घूमते रहते हैं, और जहां सखियां जा रही है उनके पीछे भी घूमते रहते हैं। उनको डिवाइड करके रखा है, कुछ यहाँ रहो कुछ वहां रहो, कुछ सबका खबर हमको मिलना चाहिए कौन क्या कर रहे हैं। तो ये सखियों ने तय किया कि हमको नंद बाबा के यज्ञ में घी अर्पण करना है, तो तुरंत तोता लोग भाग के कृष्ण भगवान के पास गए, बोले गो सखियां आ रही है मक्खन लेके सब कुछ लेके घी लेके आ रही है अर्पण करने के लिए। तो वो घाटी से गुजर रही हैं, तुरंत कृष्ण बलराम सखाओं को लेके यहां से आके घाटी का रास्ता रोक देते हैं और बहुत परेशान करते हैं, बहुत तंग करते हैं, बहुत देर झिकझिक करते रहते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारा राज्य है, वो तो हमारा राज्य है, और हमारे राज्य से घुस के तुम लोग मथुरा जाके घी बेचते हो, तो टैक्स देना पड़ेगा, ये सब कुछ यहाँ छोड़ो, अभी हमको अरेस्ट कर लेंगे आपको, तो बहुत सारा वाद होता है। तो गोपियाँ कहती है कि देखो ऐसा है, अभी आपके पिताजी का यज्ञ हो रहा है, हम उसी में आपका घी, हमारा घी जो है वो देना चाहते हैं, और आपका जो दंड है, जो भी कुछ टैक्स वैक्स बोलते हो आप, वो आपको हम कल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा लेके आएंगे, अभी हमको यज्ञ में आपका पिताजी का सेवा करने दो। तो मान जाते हैं कि कल इसी जगह पर आएंगे, ठीक है, ठीक समय पर आएंगे, और आप लोग सब अपना सामान लेके आना। तो जाते हैं वो यज्ञ में, अपना साहित्य अर्पण करते हैं, यज्ञ अटेंड करते हैं, फिर लौट के जाते हैं। और अगले दिन वो जब निकलते हैं तभी तय कर लेते हैं कि इनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, कि हर बार रोकते हैं यहाँ इसके बहाने उसके बहाने, मथुरा में, गोवर्धन में, बरसाने में, साकरे कोर में, सब जगह रोकते हैं, कितना आतंक है, कितनी परेशानी है, कोई काम करने देते नहीं है, हर जगह रोक लेते हैं, उनका कोई अधिकार भी नहीं है, आतंक है केवल, दादागिरी है और कुछ नहीं। हाँ, डंडा लेके आते हैं, मटका फोड़ देते हैं, इतना मेहनत का हमारा घी, इतना मेहनत का मक्खन, इतनी गायों को संभाल संभाल के कितना प्रेम से बनाते हैं हम लोग, इतना स्वादिष्ट, इतना अमूल्य हमारा मक्खन और दही जो होता है, ये जमीन पे गिरा देता है, उसको तो वैल्यू नहीं कुछ चीज़ की। वो सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो सब लोग ऐसा मीटिंग करते हैं फर्स्ट क्लास, हमारी ललिता जी जो हैं वो सबके नेता हैं, ऐसा कुछ काम होता है ना तो सब ललिता जी के निर्देश में होता है, यहाँ तक कि राधा रानी भी उसको अपने गुरु मानती है, क्योंकि बड़ी है उनसे वो। जब समस्या आती है, कुछ संकट आता है, कुछ झगड़ा वगड़ा होता है, कुछ वाद विवाद होता है, तो सबके सामने नेता जो है सेनापति ललिता देवी, उसके आगे वो बहुत तेज हैं, भगवान उसका सामना नहीं कर सकते, उसके आगे भगवान भी थोड़ा झुक जाते हैं। राधा रानी बोली है बेचारी, वो बहुत सादी भीली, तुरंत रोने लगती है, समझ में नहीं आता क्या करूं क्या नहीं करूं, मटका फोड़ दिया अभी क्या करूं, रोने लगती है वो, पूरा गले तक गात्र हो जाती है। ललिता जी एकदम तेज रहते हैं, तुरंत सामने आके भगवान से वादा करती, वाद विवाद करती है, भगवान को परास्त भी कर देती है। तो उसके नेतृत्व में योजना बनती है कि आज हम सब लोग जहां पर जाना है तय हुआ है वहां पर जाकर झाड़ियों में छुप जाएंगे और चूड़ियां बनाते हैं कि तू कृष्ण को पकड़ना, तू बलराम को पकड़ना, तू सुदामा को पकड़ना, तू मधुमंगल को पकड़ना, तू इसको पकड़ना, तू उसको पकड़ना, ऐसा पूरा कन्फ्यूजन नहीं जाएगा, लास्ट में कन्फ्यूजन नहीं चाहिए कौन किसको पकड़ेगा, दो को एक पकड़ लिया, एक को दो पकड़ लिया तो कैसे चलेगा, उसमें भाग जाएंगे सब लोग, नहीं पूरा एकदम सेटिंग पूरा कर देते हैं। और जैसे ही आएंगे आपको केवल आपके लक्ष्य पे ध्यान रखना है, किसको पकड़ना है उसको जाके पकड़ना है बस, और पीछे से कूद कर ऐसे पकड़ना है कंबल डाल के कि अपने कब्जे में आ जाएंगे पूरे, सबको अरेस्ट कर लेंगे हम लोग। तो ये बड़े चाव से आते हैं, आज तो हम लोग विजयी हैं, हाँ हमारे कहने के अनुसार वो मटका लेके आएंगे, हम लोग बैठ के बड़े रुबाब से भोजन करेंगे। चाहते हैं कहाँ हैं गोपियाँ, देख रहे हैं कृष्ण बलराम बड़े चाव से आ रहे हैं, कुछ देर प्रश्न करने वाले हैं कहाँ पर हैं, सब उन पर झटक पड़ते हैं, इस तरह से वो कुछ नहीं कर पाते हैं, सब लोग कुछ क्षण में अरेस्ट हो जाते हैं, और उनको बाकी लोग डंडे से पीटते, इतना पीटते हैं रोने लगते हैं ग्वाल बाल सब, कृष्ण बलराम बलराम जी सब मधुमंगल सब रोने लगते हैं, अरे बचाओ बचाओ डंडे पड़ रहे हैं, तो कृष्ण बोल रहे हैं हमें भी बचाओ डंडे मुझे भी पड़ रहे हैं, हाँ अरे पहले तो आपको पकड़ा था, आप भाग भाग के आके गिरिराज को उठाया था आपने, क्या करूं तभी तो उठा लिया मैंने, अरे राक्षसों का आतंक हुआ तो मैं आपको पुकारते तुरंत आके उनको मार देते आप, लेकिन आज मैं भी असहाय हूं, जैसे आप पर पड़ रहे हैं मुझ पर भी पड़ रहे हैं, तो फिर एकदम शरणागति में आ जाती, रुबाब जो है शरणागति में रूपांतरित होता है। तो वो कहते हैं गोपियों माफ करो सखियों, हमसे अपराध हुआ, छोड़ दो हमको भी, बोले अभी कल तुम सब लोग कन्या बनकर आओगे, गोपी बनकर आओगे, हम सब लोग ग्वाल बनकर आएंगे, हमारी राधा रानी जो है वो कृष्ण बनकर आए, तुम्हारा रूप धारण करके आएगी, और तुम जो राधा रानी बनकर आना, सब सखियों का घूंघट ओढ़ के पर्दा मार के आना, अच्छी तरह से श्रृंगार करके आना, मटका लेके सर पे, किसी में दही, किसी में दूध, किसी में मक्खन, सब लेके आना, तब आपको हम माफ कर सकते हैं। तो उस वादे के अनुसार अगले दिन इसी जगह पर भगवान ने आके श्यामा सखी बने, वो बहुत सुंदर श्रृंगार करके भेजा मैया ने उनको, और फिर यहाँ पर मटका धारण करके आए। अब सब गोपी ने उनको रोका, ऐसे रुक जाओ, ये हमारा रास्ता है, तो हमारे इलाके से गुजर रही हो, इस तरह से रोक दिया उनको, और बड़ी शर्मिंदगी से, बड़ी ही सेवा भाव से भगवान ने उनको अपना मटका अर्पण किया, और ग्वाल बाल में सजे हुए सब गोपियों ने, राधा रानी ने सबका प्राशन करके आनंद लिया उसका। तो ये दान निवर्तन कुंड है, दिस इज द प्लेस ऑफ रिटर्न डोनेशन। हाँ, वो करने आए थे एक, हो गया दूसरा। कुछ सोच के आए थे कुछ करेंगे, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही उसका, क्योंकि यहाँ पर जो है हर समय गोपियाँ विजयी होती हैं और भगवान हारते रहते हैं। बड़ी इच्छा के साथ, बड़ी प्रेम के साथ वो अपने आप को हारने में बड़ा आनंद प्राप्त करते हैं। तो ये दान निवर्तन कुंड है, ऐसे कई सुंदर सुंदर कुंड यहाँ पर गोवर्धन के आसपास, गोवर्धन की शोभा बढ़ा रहे हैं, भगवान के धाम की शोभा बढ़ा रहे हैं, भगवान के लीलाओं की शोभा बढ़ा रहे हैं। और गोवर्धन हर समय, गोवर्धन अपनी लीलाओं से, अपने अस्तित्व से, अपने सान्निध्य से हम सबका गौरव बढ़ा रहे हैं। उनके सान्निध्य में बैठने से हमारा भी गौरव बढ़ रहा है। यहाँ पर हर व्यक्ति पहुँच नहीं सकता है इस रज के अंदर, क्योंकि इस रज के अंदर अति उत्कट लीलाओं को भगवान ने किया है। इसलिए आप लोग सब लोग दंडवत करिए और भगवान को, गोवर्धन जी को हजार बार धन्यवाद दीजिए कि आपने, आपके चरणों में हमको लाया। अभी हमारे दिल में एक ही ख्वाहिश है आपके लिए कि आप हमें हरी भक्ति देना, हरी सेवा देना। आपकी कृपा से हरी सेवा प्राप्त होती है, क्योंकि वो आपका अधिकार है। कृष्ण से तुम्हारा, कृष्ण दीते पारो तुम्हारी शक्ति आचे, या आपकी शक्ति है कि आप कृष्ण को हमको दे सकते हैं, उनकी सेवा को दे सकते हैं। आप कृपा करके उनकी सेवा को हमको दीजिए और हमारे जीवन को सफल कीजिए। गोपियाँ भी यही कहते हैं कि हरी भक्ति, हरी सेवा को देने में समर्थ है ये, इसलिए वो भी उनको पूजती है, ये भी उसको वंदनीय मानती है। गोपियों के लिए, सर्वश्रेष्ठ भक्तों के लिए ये हरिदास वर्य हैं, द टॉप मोस्ट ऑफ ऑल द हरिदास इस श्री गिरिराज गोवर्धन। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय हो। जय राधे, जय कृष्णा, जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ, मदन मोहन। सब लोग पुकारो, प्रेम से पुकारो। जय राधे, जय कृष्णा, जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ, मदन मोहन। हे राधे, हे कृष्ण, हे गोविंद। जय राधे, जय कृष्णा, जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ, मदन मोहन। हे गोविंद, हे कृष्णा, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, कालिंदी जमुना जय जय महावान। गिरि गोवर्धन कालिंदी जमुना जय जय महावान। केशि घाट बंसी वट द्वादश कनाना, जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंद नंदाना। Thank you.
श्री जय कृष्णा जय वृंदावना श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहना
सब लोग पुकारो
राधे राधे गोविंदा गोविंद राधे 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 गोविंदा गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
करो पुकारो
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
गौरांग जय श्री राधे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
प्रे फॉर एवरीबॉडी सबके लिए प्रार्थना कीजिए गिरिराज के तलटी में बैठकर पुकारो सबके लिए पुकारो हो सकता है कि ऐसे मौका बार बार नहीं आएगा मे बी ओनली वंस सब लोग जागृत होकर पुकारिए आत्मा के सर पर जगकर पुकारिए
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हे गिरिराज हे गोवर्धन हे राधे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हे गिरिराज हे गिरि गोवर्धन हे हरिदास वर्य
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
पुकारो पुकारो सब लोग पुकारो
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हे गोपाल हे गोविंदा
जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय 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 राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम हे पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम पावन राधे तेरो नाम पावन श्री गिरि गोवर्धन धाम पावन श्री गोवर्धन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय प्रभु पदा 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 जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे
जय जय श्री राधे।